11 जनवरी, 6 जनवरी, आज का पुरुषार्थ, चलते फिरते अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो साक्षी दृष्टा बन जाएंगे। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पार्ट देखते सकाश अर्थात सहयोग देता है, सकाश देना ही निभाना है। चलते फिरते अपने को क्या समझो? निराकारी आत्मा। और कर्म करते क्या समझो? फरिश्ता समझो तो क्या बन जाएंगे? साक्षी दृष्टा बन जाएंगे। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे परंतु साक्षी फरिश्ता कहां रहता है? ऊपर से साक्षी हो, सब पार्ट देखते सकाश अर्थात सहयोग देते। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे ऊपर से सकाश देते, पाठ देखते, सहयोग देते, और ये सहयोग देना ही निभाना है। भारत में एक संत कवि हुए थे पलटू दास, उन्होंने लिखा है, जनी कोई होवे बैरागी हो, बैराग कठिन है, जग की आशा करे न कबहू, पानी पीवे न मांगी हो, भूख प्यास छूटे जब निद्रा, जियत मरे तन त्यागी हो, जाके धर परसीस न होवे, रहे प्रेम लव लागी, पलटूदास बैराग कठिन है, दाग दाग पर दागी हो। वो कह रहा है कि बैराग बहुत कठिन है, जग की आशा करे न कबहू, जग से कोई आशा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, पानी पीवे न मांगी हो, पानी भी नहीं पीता, मांगता भी नहीं, भूख प्यास छूटे जब निद्रा, उसकी भूख प्यास और निद्रा छूट गई है, जियत मरे तन त्यागी हो, जीते हुए भी जैसे मरी हुई अवस्था है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जाके धर पर शीश ना हुए, जिसके धड़ पर शीश नहीं है, तो धड़ ऐसा है कि शीश ऊपर है नहीं, रहे प्रेम लव लागी, पलटू दास बैराग कठिन है, दाग दाग पर दागी है हो। क्या कह रहा है ये साक्षी स्थिति का वर्णन है कि जो साक्षी है वो ऐसा नहीं कि भूखा है, खा रहा है परंतु साक्षी है, पी रहा है परंतु साक्षी है, नींद कर रहा है परंतु नहीं कर रहा है, जैसे जी रहा है, जियत मरे तन त्यागी हो, जीते जीते जैसे तन को त्याग दिया है, जैसे तन से बाहर है, जैसे तन मर चुका है, जाके धर पर शीश न होवे, अर्थात वो अब तर्क करना उसने छोड़ दिया है, वो कहां डूब गया है, रहे प्रेम लव लागी, प्रेम में ऐसा डूब गया है कि जहां प्रेम है वहां तर्क खो गया है, अब यहां बुद्धि से काम नहीं कर रहा है, तर्क से काम नहीं कर रहा है, किससे काम कर रहा है, हृदय से काम कर रहा है, दिल सक्रिय है, हृदय सक्रिय हो उठा है, मस्तिष्क थोड़ा सा शांत हो गया है, मस्तिष्क तो तर्क वितर्क करते रहता है, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ये क्यों होना चाहिए, वो क्यों होना चाहिए, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा, ये भी ऐसा करते हैं, यहां पर भी ऐसा, मस्तिष्क अलग हो गया है, जाके धर पर शीश न होवे, रहे प्रेम लव लागी, प्रेम की लव लागी है अंदर, पलटूदास बैराग कठिन है, दाग दाग पर दागी हो, तो जनी कोई होवी वैरागी हो, बैराग कठिन है, जग की आशा करे न कबहू, पानी पीवे न मांगी हो। इतना साक्षी भाव, सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए, अनुभव करते हुए भी स्वयं को अलग रखना, स्वयं का तदात्म्य उससे न जोड़ना, सेल्फ आइडेंटिटी से दूर, ये मैं हूं, ये नहीं, मैं इससे अलग हूं, ये भाव। जैन धर्म में कृष्ण की बहुत सारी कहानियां हैं, पर जैन धर्म की जो कहानियां हैं कृष्ण के बारे में, वो हिंदू धर्म की जो कहानियां हैं उनसे अलग है। जैन धर्म में कृष्ण को क्या कहा है? कृष्ण कहाँ है? नरक में। कहाँ है? नरक में। हिंदुओं के लिए कृष्ण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता है, भगवान है, पर जैनों के लिए नहीं। उन जैनों में एक तीर्थंकर था जिसे कृष्ण का चचेरा भाई बताया है और जिसका उल्लेख मुरलियों में कोई अलग ढंग से आता है। कौन? नेमिनाथ। एक तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकरों में से नेमिनाथ बाबा जिसका उदाहरण मुरली में कोई बैठे हैं परंतु जैसे नेमिनाथ, इस रीति से दिया जाता है। पर नेमिनाथ एक तीर्थंकर हुए हैं जो कि कृष्ण का भाई दिखाया है दूर का, जैन धर्म की फिलॉसफी में, हिंदू धर्म में नहीं। हिंदू धर्म में भागवत में तो नेमिनाथ कोई है ही नहीं, उधर अलग बहुत सारी अलग कथा है। उसमें से एक कहानी ऐसी है कि यमुना के उस पार यमिनाथ नग्न मुनि, जैन मुनि है, तपस्वी है, नेमिनाथ आया हुआ है। उधर कृष्ण को खबर मिलती है कि यमुना के उस पार नेमिनाथ आए हैं, परंतु यमुना उस समय उफान पर है, पूर आया हुआ है यमुना पर, पानी बहुत जोरों पर है। तो कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी से कि जाओ जाकर नेमिनाथ को थोड़ा सा खाना खिला के लाओ, क्योंकि वो इस पार नहीं आएगा, तुम ही जाओ उसका आवभगत करो, स्वागत करो, उसको भोजन खिला कर आओ। और जब वो कहती है परंतु इतनी नदी में तो पूर है, नाव नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, कृष्ण कहते हैं कि नदी के पास जब तुम पहुंचो तो कहना कि नेमिनाथ सदा का उपवासी है जिसने कभी भोजन नहीं किया है, तो नदी तुमको मार्ग दे देगी। वो कहती है आश्चर्य की बात है, ऐसे हो सकता है? तो वो जाती है अपनी सखियों के साथ, यमुना तट पर पहुंचती है, पानी जोर से है, बह रहा है। वो कहती है कि अगर नेमिनासी उपवासी है नेमिनाथ जिसने कभी भोजन नहीं किया, तो हे यमुने मार्ग दे। और तुरंत बीच से मार्ग तैयार हो जाता है और वो अपनी सखियों के साथ जाती है। देखती है नेमिनाथ बैठा हुआ है और ये उसने अभी अभी कहा वो उपवास है, कभी भोजन नहीं किया, पर तो एकदम धट्टा कट्टा है। और जैन मुनि जितने थे 24 के 24, कोई भी ऐसा पतलू लुकड़ू ऐसा कोई नहीं दिखा है, सब शरीर से अच्छे दिखाए, वो सभी उपवासी थे। और महावीर तो ऐसा था कि जिसने 12 साल में 300 दिन ही शायद भोजन किया होगा, परंतु वो उसका शरीर बहुत सुडोल बहुत अच्छा दिखाया होगा। तो उसे आश्चर्य होता है पर फिर भी सोचती है शायद कोई चमत्कार होगा, तो उसको भोजन देती है और वो भोजन 100 लोगों का खा लेता है, जैसे इतना भूखा है इतना खाता है। अब जाने का समय होता है तो रुक्मिणी कहती है अरे आने का सूत्र तो पता था, अब जाने का क्या, आते समय तो बोल दिया था कि ये उपवासी है, अब तो बोल भी नहीं सकते क्योंकि इसको तो आंखों से देखा है खाना खाते हुए। तो वो दुविधा में होती है, सब तक वो जैन मुनि तो वापस अपने योग समाधि में, आंखें खोलता है कोई दुविधा, वो कहती है अब जाऊं कैसे, वो कहते वही सूत्र काम करेगा। कौन सा? कि उपवासी है। तो वो कहती कैसे हो सकता है ये, तो वो फिर से जाती है यमुना के पार और कहती यदि नेमिनाथ उपवासी है उसने कभी जीवन में भोजन नहीं किया तो हे यमुने मार्ग दे। तो यमुना मार्ग देती है अवाक, अभी तो खाते हुए देखा इतना। कृष्ण के पास जाती है, कृष्ण से पूछती है ये क्या है, वो कहता है, कृष्ण कहते हैं नेमिनाथ योगी की उस अवस्था में पहुंच गया है जब वो पीता है खाता है पर फिर भी वो साक्षी है, वो खाते हुए भी अपने आप को शरीर के बाहर खड़े होकर देखता है कि वो खा रहा है, वो नहीं खा रहा है, खाते हुए भी नहीं खा रहा है, पीते हुए भी नहीं पीता है, सोते हुए भी नहीं सोता है, ऐसी नेमिनाथ की अवस्था है। भूख प्यास छूटे जब निद्रा, जियत मरे तन त्यागी हो, जाके धर पर शीश न होवे रहे प्रेम लव लागी, जगी आस करण कबहू पानी पीवे न मांगी हो, पलटुदास बैराग कठिन दाग दाग पर दागी हो। वो साक्षी अवस्था है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ कर नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि सो रहे, कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, कोई मर रहा है। हम कौन है? साक्षी। बाबा ने कहा है साक्षी हो जाओ, कहा ना देह की दुनिया में जो भी होता रहे तुम क्या करो, कुछ भी होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पार्ट देखते हैं। सकाश अर्थात सहयोग देता, सकाश देना ही निभाना है। श्रीमत की उल्टी गंगा नहीं बहानी है। हमें याद है बहुत बहुत साल पहले हॉस्पिटल में एक डॉक्टर आई थी, तो पेशेंट आ गया, तो उसको सिस्टर ने कहा पेशेंट, तो वो कहती थी मेरा आज मौन है, आज मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं साक्षी हूं। साक्षी की उल्टी गंगा नहीं बहानी है। साक्षी परम अवस्था है, बहुत ऊंची अवस्था है। साक्षी को वही समझ सकता है जो स्वयं साक्षी में स्थित है, साक्षी भाव में स्थित है, और यह अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है। साक्षी भाव इतनी आसानी से नहीं आएगी। अलग हो जाना साक्षी नहीं है, डिटैचमेंट साक्षी नहीं है। डिटैचमेंट अलग चीज है, साक्षी भाव अलग चीज है। किनारे बैठ जाना, किनारे हो जाना, मुझे कोई लेना देना नहीं, न्यूट्रल हो जाना, यह साक्षी अवस्था नहीं है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, इसमें तो घृणा भरी हुई है। साक्षी में तो घृणा है ही नहीं, साक्षी तो प्रेम की अवस्था है, सुख दुख के परे की अवस्था है साक्षी। साक्षी में प्रभावित होना नहीं है। तो साक्षी तो बाप समान अवस्था है, बहुत सर्वोच्च अवस्था है, जिसमें व्यक्ति संसार में है पर संसार में है नहीं। हर बात में साक्षी है। तो साक्षी में क्या क्या होता है? बाबा ने कहा चलते फिरते अपने आप को आत्मा समझो, कर्म करते फरिश्ता समझो, ये साक्षी स्थिति में रहो, देह की दुनिया में जो होता है होने दो, तुम ऊपर रहो, फरिश्ता रहो, सकाश दो, सहयोग दो। और अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, सकाश देने की सेवा बिना बेहद के वैराग के हो नहीं सकती। जब तक वैराग नहीं है तब तक साक्षी तो हो ही नहीं सकते। तो साक्षी में बहुत सारी चीजें होती है। अवस्था में सबसे पहला साक्षी में नो अटैचमेंट, 21 बातों की हम चर्चा करेंगे। साक्षी अवस्था अर्थात जिसमें कोई भी अटैचमेंट, कोई भी लगाव, लागत, मोह किसी में भी नहीं है। मोह की जो अवस्था है, जो व्यक्ति कहता है मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, वो कैसे सकाश दे सकेंगे, वो तो फंसा हुआ है। साक्षी अवस्था निर्मोह की अवस्था है, साक्षी अवस्था डिटैचमेंट की अवस्था है। साक्षी अर्थात संसार में जो लास्ट संडे की मुरली थी, कर्मातीत अर्थात बंधन मुक्त, कोई उसके बंधन नहीं है, और हर दिन एक एक बंधन कम करते जाना है। जिस पर जिससे बहुत प्यार किया उसी ने धोखा दे दिया, अच्छी बात है या बुरी बात है? ये बहुत ही अच्छा हुआ, जो मोह था वो कम हो गया ना। बलिहारी ड्रामा की, वाह वाह वाह, याद आएगा ना, तो साथ में अब वो भी जोड़ देना कि याद करने से मिला क्या मुझे, इतना विश्वास किया, इतना भरोसा किया, पर धोखा तो दे दिया ना एक दिन, भाग गया एक दिन धोखा देके। तो इससे फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा, क्या क्या फायदे हुए? एक बंधन कम हुआ, हिसाब किताब चुकतू हो गया, मोह कम हो गया हमारा, उसके प्रति जो उसको जो रहता था ना हम, कि उसको जस्टिफाई करे, मतलब उसको स्पष्टीकरण दे, वो खत्म हो गया। अब किसी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं, वो मोह था इसलिए स्पष्टीकरण देना पड़ता था, भय था, भय भी खत्म हो गया सूक्ष्म रीति से, समय बच गया सबसे मेन, तो अच्छा हुआ। तो फरिश्ता अवस्था अर्थात नो फरिश्ता अवस्था अर्थात अटैचमेंट से मुक्त हो गया। तो एंजल जो होता है, फरिश्ता जो होता है, साक्षी जो होता है, वो कहीं अटैच नहीं होता है। या फिर जब तक डिटैच नहीं तब तक साक्षी नहीं। जो अटैच है वो सकाच दे ही नहीं सकता है। कैसे सकाच देगा? सकाच देगा भी तो किसको देगा? अपनी पत्नी और बच्चों को ही देगा। क्योंकि ज्ञान तो पता है सकाच देना है दुखी आत्माओं को, तो दुखी में तो अपने पत्नी बच्चे पति दिखेंगे, तो सबसे पहले इनको देता हूं। चालू अपने परिवार से करेगा और एंड भी वहीं करेगा, बीच बीच में भी उन्हीं को याद करेगा। विश्व तो बस नाम मात्र, गोला इमर्ज कर दिया और एक धक से सकाच दे दिया, और यहां एक एक बात को सकाच दे रहे, इधर आधा घंटा उधर 3 सेकंड में पूरा, सारे विश्व को सकाच देना है और क्या करना है? एक साथ धक से सकाच दे दिया, पानी घुमा दिया, सकाच पूरी हुई। पर अपने घर वाले तो जैसे मूर्ति है मंदिर की, शांति की किरणें मुझसे जा रही है, फिर पवित्रता की किरणें जा रही है, फिर शक्तियों की एक एक जा रही है, और उधर पूरा गोला हाथ में ले लिया, फू सकाश पूरी हुई, क्रैश सकाश फटाफट। और इधर बहुत धीरे धीरे घर को सकाश, परिवार को सकाश, एक एक चीज को सकाश, परिक्रमा सब कुछ। दूसरा, साक्षी में ब्लेम नहीं है, किसी को भी ब्लेम नहीं करता है साक्षी, अर्थात वो किसी को भी दोषी नहीं ठहराता, किसी में मीन मेक नहीं निकालता, सबसे अलग, किसी में भी ये ब्लेम गेम नहीं है उसमें कहीं, वो साक्षी अवस्था है। तीसरा, साक्षी अर्थात कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट अर्थात असमंजस, कॉन्फ्लिक्ट अर्थात झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट अर्थात एक व्यक्ति ये कह रहा है वो कह रहा है, कल की हमने रात में चर्चा की ना, तनाव का कारण है मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं, मैं होशियार हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं योगी हूं, मुझ में ये है, मुझ में वो नहीं है, ऐसा है वैसा है, झगड़े, सब झगड़ों का एक ही तो कारण है क्या? मैं राइट हूं, यही झगड़े का कारण है। वो कहता है तुम गलत हो, हम कहते हैं तुम गलत हो, हम जो सोचते हैं उसमें दोष है, वो हमारे बारे में वही सारा सोचता है, हम सोचते हैं उसकी ना वो मुरली तो बहुत सुलता है पर धारणाओं में थोड़ी कमी है उसकी, बाकी सब ठीक है, बोलता बिलता अच्छा है पर प्रैक्टिकल में धारणा बिल्कुल नहीं है, खाली बोलने तक है, हम उसके बारे में ऐसा सोचते हैं और वो हमारे बारे में भी ऐसा ही सोचता है। जो जो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं वो सारे प्रकंपन वाइब्रेशंस उस तक जा रहे, हम सोचते बेचारा परवश है माया के अधीन है, हो जाएगा इसका कल्याण एक दिन, और वो सोचता है बेचारा अधीन है माया के, वो सोचता है हमारा कल्याण हो जाएगा, हम सोचते उसका हो जाएगा, हम सोचते बेचारा कमजोर है आत्मा में बल नहीं है, वो सोचता है इसमें बल नहीं है। साक्षी अर्थात ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, सारे झगड़े, सारे मतभेद, असमंजस्य, मनोमालिन्य, ये सब से ऊपर। चौथा, साक्षी अर्थात डिस्टर्बेंस फ्री, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, डिस्टर्ब हो रहे अर्थात साक्षी नहीं है, डिस्टर्ब हो रहे अर्थात हम ये समझ रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई है, तदात्मा है हमारा, डिस्टर्ब होगी कोई आत्मा कोई सीन से, तो इसका मतलब ड्रामा के राज कोई नहीं समझा है, इसको ड्रामा साक्षी होके नहीं देख रहे। कल की रात की क्लास में कहा था कोई भी सीन देखो तो क्या सोचो, ये मुझे पहले से ही पता था ये मुझे पहले से ही पता था, इसमें ऐसा ही होना था, मुझे तो पहले, मैंने खाली तुमको बताया नहीं, अगर तुमने पूछा होता तो पहले ही बता दिया होता ऐसे होने वाला है बोलना जैसे व्यास को पूछा जाता है ना, बीच बीच में व्यास एंट्री करता है महाभारत में, उसको सब पता होता है क्या क्या होने वाला है। द्रौपदी के पास पहुंचता है तो वो कहता है ना उससे, अपने वस्त्र संभाल के रखना, एक एक बता, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा बता के जाता है, बीच बीच में, बीच बीच में एंट्री दिखाई है उसकी, बीच में आता है एक हाथ भविष्यवाणी थोड़ी बहुत करता है और निकल जाता है, इशारा देते रहता है सिग्नल्स बीच बीच में आके, तो वैसे हम भी देते रहे और बाद में जब हो जाए चीजें बोलना मुझे तो पता थी, ये तो पता थी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। उसके बाद में साक्षी अर्थात इफेक्ट फ्री, कोई प्रभाव नहीं, जो सीन्स हो रही है उसका कोई असर नहीं है हम पर, नो रिएक्शन नो इफेक्ट, कोई रिएक्ट हम क्यों रिएक्ट करें, ये सब ठीक है, ऐसा ही होना था, कल पहले भी ऐसा ही हुआ था, मूवी रिपीट हो रही है, पहले से ही पता था सफेद घोड़ा ही जीतने वाला है, भले काला घोड़ा आगे भाग रहा है, तुम्हें कैसा पता, तो फिल्म पहले देख चुका हूं इसलिए मुझे पता था, कोई असर नहीं, अभ्यास करना है, ये तो एक प्रैक्टिस भी है और ये परिणाम भी है ज्ञानी योगी जीवन का, कि जिस पर कोई असर नहीं होता, पर ये अभ्यास भी है, ऐसा अभ्यास भी करना है, छोटी छोटी घटनाएं हो रही है उसका ये अभ्यास करना है कि इसका अब मुझ पर कोई असर नहीं, किसी ने आके कहा तुम बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही प्यारे हो, कोई असर नहीं, दूसरा आके कहते तुम बोलते तो अच्छे हो पर तुम्हारी धारणा में गड़बड़ दिखती है मुझे, ब्लेम करने वालों की कमी थोड़ी है, पुरुषार्थ के मार्ग पर निंदकों की तो अंबार लगे हुए हैं, खींचने वाले हाँ, तो ईर्ष्या करने वालों की कमी थोड़ी ना है संसार में, सब है, बैठे हैं नुक्कड़ नुक्कड़ पर बैठे हैं, साक्षी अर्थात अगला नो फियर, कोई भय नहीं है साक्षी स्थिति में, भय किसमें है, नीचे की अवस्था में है, जहां पे हमें भय है हमें कोई कुछ कह ना दे, हमारी कोई निंदा ना करे, ये भी देहभान है, मेरी बदनामी ना हो जाए, ये क्या है, देहभान का एक रूप है, भय साक्षी अर्थात उसमें कोई भय नहीं है, बदनामी करनी है मुक्त कंठ से बदनामी कर लो, उससे अगर हमारे अंदर कुछ गड़बड़ है तो ठीक, पर नहीं है अंदर कुछ तो फिर भय किसका, किस लिए भय, जब वो चीज दूसरा कह रहा है पर हमें पता है हमारे अंदर, दूसरा आके कहते तुम ना बड़े अहंकारी हो तो क्या करोगे सुशील भाई बताओ, कोई आपसे आके कान में कहते एक बात आपसे कहनी है, 5 मिनट है आपके पास, टाइम लेंगे, आपके पास टाइम है तो हाँ चलो बैठो, और फिर बात क्या करनी है, आप में अहंकार बहुत है, अब बोलो क्या उत्तर दोगे, तुम झूठ बोल रहे हो नहीं भाई जी मैंने देखा है ऐसा, मुझे पता है आप में बहुत ज्यादा अहंकार, आप बोलो, अच्छा मैंने दिखाया था हाँ ये भी अच्छा है, क्योंकि आप विरोध का भाव उत्पन्न कर रहे हो, वो कहता है यहां प्रश्न अब आपके अहंकारी होने और ना होने का नहीं रहा, पर प्रश्न उसकी जिद का है, हाँ अब ये अहंकार है उसका, और आपने अगर उसका विरोध किया तो वो मान जाएगा, अच्छा अच्छा थैंक यू मुझे बता दिया आपने कि आप में तो है ही नहीं, मुझे लगा आप में है, ऐसा कहेगा बिल्कुल नहीं, और बढ़ेगा और झगड़ा करेगा, क्योंकि उसने इतना टाइम लिया है आपसे ये बताने के लिए कि मुझे खास, और फिर जाते जाते ये खत भी पढ़ लेना, उसमें तो और भयंकर चीजें लिखी है और नंबर भी लिखा है इसमें, बाद में बताना आप तो एफ फियर साक्षी स्थिति अर्थात भय नहीं, अगर दूसरा कुछ कह भी रहा है तो वहां पर तुरंत अपने आप को देखना क्या वास्तव में मेरे अंदर वो चीज है, नहीं है खत्म छोड़ दो, जिसको जो कहना है कहे, फिर भय नहीं है। उसके बाद में साक्षी अर्थात गिल्ट फ्री, अपराध भाव से मुक्त, कोई गिल्ट कॉन्शियसनेस नहीं है कि ये ऐसा हुआ वैसा, ऐसा क्यों कर दिया वैसा क्यों कर दिया, गिल्ट से मुक्त है साक्षी, क्योंकि मैं देख रहा हूं दूर से बैठ के देख रहा हूं। अगला साक्षी अर्थात हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस दोनों से परे, ना उसे सुख होता है ना उसे दुख मिलता होता है, यहां पे सुखद घटनाएं हैं दुखद घटनाएं भी है संसार में, साक्षी अर्थात सुख दुख के सागर का पानी उसे भिगोता नहीं है, सुख दुख के सागर का पानी साक्षी को भिगोता नहीं, वो अलग रहता है, संसार में चीजें होती रहेगी, अच्छी चीजें होगी बुरी चीजें होगी, तो क्या जो हर बार अच्छी चीजें होगी तो दुखी हो जाऊं, और बुरी चीजें होते तो रोते बैठूं, ये कहां का योगी जीवन है। होने दो जो हो रहा है, बाहर दूर बैठ के मैं देख रहा हूं साक्षी भाव से। उसके बाद में आए साक्षी अर्थात कोई इंटरफियरेंस नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं, ज्यादा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है चीजों में। जो हो रही है सही हो रही है। दो महिला झगड़ रही है, हम सोचते हैं इनका झगड़ा सुलझाऊं क्या होगा दो महिलाओं के बीच तो किसी का भी मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है वहां पर भी तो बोलो समझाओ फिर जब भी हम समझाने जाते हैं उसमें हमारे विचार, हमारे मत, हमारी मतें ऐड हो जाती है और हम किसी का पक्ष लेने लगते हैं फिर। और जैसे ही हम किसी का पक्ष लेते हैं हम किसी दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं, बस और झगड़ा बढ़ जाता है। वो हर परिस्थिति के लिए अलग अलग उत्तर होगा, किस तरह की परिस्थिति है और कितना हम उसमें साक्षी रह सकते हैं। इतना ही इन्वॉल्व होना है दूसरे मैटर्स में जहां तक हमारी स्थिति बिगड़े ना, क्योंकि जैसे ही हम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हम उसमें ज्यादा हस्तक्षेप करने लगते हैं सब कुछ चालू हो जाता है वहां पर। ईर्ष्या, द्वेष, उनके अवगुण देखना, चर्चा करना, वो सब चालू हो जाता है, न चाहते हुए भी चालू हो जाता है। इसलिए उतना ही इन्वॉल्व होना है जिसमें हमारे मुख से किसी के लिए भी कुछ भी बुरा ना निकले, बस इतना ध्यान रखना है। युक्ति युक्त बाबा जो कहते हैं, उस दिन कहा ना बाप स्वयं युक्तिबाज है। अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी पर कितनी युक्ति से कही उसने। अरे चलो यही देख लो, बाबा का पाठ पूरा हो गया पर कितनी युक्ति से, किसी को पता चल रहा है? शांतिवन में लोग आ रहे हैं, बैठ रहे, बाबा को मिल रहे, जा रहे, उसने पता ही नहीं होने दिया, पता ही नहीं चला, कितना युक्ति से कर लिया। क्या स्ट्रेटेजी, देखो कितनी पावरफुल स्ट्रेटेजी है कि पाठ पूरा हो गया। नहीं तो पहले अनाउंस करते थे, अब बाबा नहीं आएंगे, बाबा बाबा ऐसे कैसे नहीं आएंगे, ये सब करते थे। अभी देखो वो खत्म हो गया, वो है ही नहीं, वहां बिठा दिया। कितना जबरदस्त प्लानिंग की है और लोग आ रहे, उनको खुश भी होके जा रहे। ऐसा भी नहीं कि हमको वो वाला डायरेक्ट देखना था, इसी में खुश है। सुना तो है उन्होंने भी कि पार्ट कोई दूसरा था पहले, पर फिर भी खुश होके जा रहे। तो इंटरफियर नहीं। उसके बाद में जे, जेलसी नहीं। परिश्ता या साक्षी अर्थात साक्षी किसके साथ जेलस, किससे ईर्ष्या रखे? कोई आगे बढ़ रहा है, कल की मुरली, उसको आगे बढ़ने दो, उसके आगे बढ़ने में हमारा बढ़ना है। ठीक है, अच्छा है, बढ़ रहा है तो बढ़े आगे, बहुत अच्छा है, जाने दो, सेवाओं में आगे, योग में आगे, ज्ञान में आगे, प्रसिद्धि में आगे, हर चीज में जाने दो आगे। किसी के आगे जाने से हम पीछे तो नहीं रह जाते ना? किसी के बड़े होने से हम छोटे होते हैं क्या? कोई कहे मैं बहुत बड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तुम होंगे कोई भी, पर तुम्हारे बड़े होने से मैं छोटा थोड़ी ना होता हूं। मैं हूं, तुम हो, हर एक का अपना अपना है। तो साक्षी अर्थात जो जेलसी से ऊपर है। उसके बाद में साक्षी अर्थात कार्मिक अकाउंट, कर्म बंधन जो है उसके ऊपर रहता है। कर्म तो करता है, ऐसा नहीं कि कर्म नहीं कर रहा है। कोई मर रहा है तो मदद नहीं करेगा, ऐसा नहीं। किसी को तकलीफ में है, कोई दर्द में है, रादर हम तो ऐसा कहेंगे साक्षी स्थिति में जो है वो सबसे ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि अंदर रहम भाव है। ये सारे जितने धर्म स्थापक थे, गुरु नानक देव जी, क्या कम साक्षी थे क्या? जीजस क्राइस्ट, सबसे ज्यादा साक्षी तो जीजस क्राइस्ट है, सबसे ज्यादा साक्षी तो मोहम्मद पैगंबर है। सब प्रेम, उनके अंदर वैराग भी इतना कूट कूट के भरा है तो प्रेम भी उतना ज्यादा है। महात्मा बुद्ध से ज्यादा साक्षी और कौन है? कोई भी नहीं है। पर सिद्धांत क्या है? करुणा, प्रेम, ये जैन मुनि कितने साक्षी, कितने प्रेम से अंदर से भरे होते, इसलिए तो जब पानी होता है, बारिश होती है, वो नेमिनाथ का दिखाया ना, कृष्ण ने कहा वो इधर नहीं आएगा, रुक्मिणी तुमको ही जाना पड़ेगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश में जैन मुनि नहीं चलते जमीन पर। क्यों? कीड़े जंतु घास पर नहीं चलते। क्यों? क्योंकि उसमें कीड़े जंतु होते, वो मारना नहीं चाहते। जिसको उस मूक प्राणियों की चिंता है, वो मनुष्य के प्रति कितना चिंतित होगा, कितना प्रेम से भरा हुआ होगा, और साथ साथ अपने प्रति कितना कठोर है और कितना वैरागी है। तो वैराग भी है तो प्रेम भी है। जो साक्षी होगा वो सबसे ज्यादा मदद करेगा। वो कभी कामचोर नहीं हो सकता है, वो कभी निठल्ला नहीं बैठ सकता है। हाँ, वो तो कहां पहुंच सकती है ऐसे योगियों के पास। मीडिया को तो भपका चाहिए, ये तो गुप्त योगी होते हैं, सब संसार से परे दूर, और वास्तव में इस सृष्टि को थामे हुए ऐसे ही योगी है आज भी, जो गुप्त रीति से तपस्या कर रहे, ज्ञान में नहीं है पर तपस्वी है, पवित्र है, और उन्होंने इस सृष्टि को थाम रखा है, नहीं तो ये सृष्टि जल भून कर खाक हो गई होती कब की। ऐसे योगियों की पवित्रता, हिमालय पर बैठे हुए, जंगलों में बैठकर तपस्या कर रहे, दुनिया अभी तक उन तक पहुंची नहीं है, ऐसे तपस्वी है कुछ कुछ, क्योंकि उनको लाइमलाइट ये जो भपका है इससे बहुत दूर रहते हैं। तो साक्षी अर्थात ये जो कर्म का बंधन है, कर्म करते हैं परंतु बंधते नहीं है, निर्लिप्त अवस्था है, निर्लेप आत्मा का समान, मैं आत्मा निर्लेप, कुछ भी मुझे स्पर्श नहीं करता, इतना खुद को डिटैच रखना, इतना खुद को अलग रखना, ये साक्षी अवस्था है। पलटू दास आगे उसी दोहे में कह रहा है, अब तो मैं बैराग भरी, सोवत से मैं जागी परी, अब तुम खूब, अरे बहन आज नहीं। तो वो कह रहा है, अब तो मैं बैराग भरी सोवत से मैं जागी परी, सो रहा हूं परंतु जैसे जाग रहा हूं, मैं जाग गया हूं, मैं उठा हूं इस अवस्था से। साक्षी अवस्था जागरण की अवस्था है, जिसमें चेतना जाग रही है 24 घंटे, क्योंकि आत्मा सो नहीं रही है, शरीर सो रहा है, दिख रहा है ऊपर से, पर आत्मा जागी हुई है, क्योंकि उस अवेयरनेस में वो जी रहे है, इसलिए कोई दुख नहीं है। एल अर्थात लैमेंट, लैमेंट अर्थात पश्चाताप। एक बताया जी, जिसको कहते हैं गिल्ट, अपराध भाव। एल अर्थात लैमेंटेशन, लैमेंटेशन अर्थात कोई दुख नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है किसी बात का, यह साक्षी की अवस्था है। एम मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं साक्षी अवस्था में, ऊपर रहता है, ना दूसरे ने हमको मिसअंडरस्टैंड किया, ना ही जाकर उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोई इच्छा है, ना हमको, ना हम किसी को मिसअंडरस्टैंड कर रहे। ये सबसे बड़ा एक टेम्पटेशन है, जैसे इन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा और जैसे मैंने सुना तो मेरी रिएक्शन क्या है, उनके जाकर बताऊं कि थोड़ी सी बात करनी है, कि तुमने ये जो कहा या बोला, या तुम जो समझते हो मैं ऐसा हूं वैसा मैं नहीं हूं, तो हमको क्या लगता है वो मानेगा? तो वो मानेगा क्या? बातों से कभी कोई मानता है? दाल में कुछ काला है, इसलिए फरिश्ता, अव्यक्त स्थिति फरिश्ता या साक्षी अर्थात मिसअंडरस्टैंडिंग से परे। सत्य सत्य है, उसे किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सत्य मौन है। उसके बाद में अगला एन, निगेटिविटी। साक्षी अर्थात साक्षी स्थिति निगेटिव स्थिति नहीं है, घृणा वाली नफरत वाली स्थिति नहीं है। एक प्रश्न है, इस संसार का सबसे शुद्ध भाव कौन सा है? शुद्ध भावना। इस संसार की सबसे शुद्ध भावना कौन सी है? सबसे शुद्ध भावना, कल्याण, रहम, प्रेम, सबसे शुद्ध भावना परमात्मा प्यार, कोई भी अपना नहीं, सबसे शुद्ध भावना। ये उत्तर चौंकाने वाला उत्तर है। इस संसार की सबसे शुद्ध भावना है घृणा। घृणा में संपूर्ण अहंकार काम कर रहा है, कुछ भी मिक्सचर नहीं है, बाकी सारी जो भावना है वो उसमें मिक्सचर है। घृणा जब होती है वो शुद्ध खालिस सोना है, पॉजिटिव नेगेटिव की प्रश्न नहीं था, प्रश्न था शुद्ध, शुद्ध अर्थात और कुछ मिक्सचर नहीं, शत प्रतिशत, 100%। क्योंकि जब घृणा होता है तो और कुछ होता है क्या? संपूर्ण शुद्ध घृणा होती है। घृणा संसार की सबसे शुद्ध, शुद्ध उस अर्थों से। प्रेम जब होता है तो हमको क्या लगता है प्रेम है? मतलब खाली प्रेम है, हम कहते हैं किसी से मैं तुमसे प्रेम करता हूं, पति तो कहता है ना अपनी पत्नी से मैं प्रेम करता हूं, और अंदर क्या सोचता है? वो जोक है ना, तुम्हारे पास एक पति बर्तन घिस रहा है, तो उसको इंटरव्यू लिया, आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आप सारी उम्र अपनी पत्नी के साथ बिताओगे, ऑप्शन बी, वो कहता आई टेक ऑप्शन बी, बी बी बी, अभी बोला ही नहीं है, वो कहता आई चूज ऑप्शन बी। देखा है सबने? दिखा देते हैं। वो पता नहीं बड़ा है, वो जो भी होगा, इससे पता चल रहा है कि अंदर कितना बेचारा मंजूर है, जो भी होगा, क्योंकि ए देख लिया है, ए से बड़ा दुख और कोई है नहीं। तो साक्षी अर्थात नो निगेटिव। अगला ओ, ओ अर्थात ऑब्स्टेकल फ्री, साक्षी अर्थात विघ्न नहीं। कल की अव्यक्त वाणी में निर्विघ्न की कितनी अच्छी बातें थी। निर्विघ्न अर्थात स्वयं विघ्न रूप नहीं, निर्विघ्न अर्थात किसी के लिए विघ्न रूप नहीं, निर्विघ्न अर्थात पाठ पढ़ना उससे आगे बढ़ना, विघ्न आया पाठ पढ़ना आगे पढ़ना लगन से और पक्के हो जाना, और दूसरा है विघ्न आया हलचल में आया तो रजिस्टर में दाग। साक्षी अर्थात कोई विघ्न ही नहीं, विघ्न इसका मतलब ये नहीं विघ्न नहीं आ रहे, आ रहे पर पाठ पढ़ रहे आगे बढ़ रहे बस निकल गए। ये क्यों आया, कहां से आया, कौन था ये, किसने लाया, ये सब में नहीं जाना है। उसके बाद में टी, प्रुजुडिस, प्रुजुडिस अर्थात पक्षपात, इसका पक्ष लू उसका पक्ष लू, किसी का पक्षधर नहीं है साक्षी, इसके साथ भी नहीं है ना उसके साथ है, इसको कहना मैं तुम्हारे साथ हूं, उसके कहना मैं तुम्हारे साथ हूं, फॉल्स नोशन जी होता है, पक्षपात भी होता है, बायस जिसको कहते हैं, बायस्ड माइंड, एक तरफ झुका हुआ, टिल्टेड माइंड, एक तरफ झुका हुआ है, पहले से उसके तरफ है, पहले से, जैसे दो लोगों का झगड़ा हो रहा है उससे एक को हम जानते हैं, झगड़ा कोई भी हो पर पहले से ही हम उसके तरफ है, पार्शियल फेवरेटिज्म, हम पहले से ही उसके तरफ पकड़ लिया कि ये राइट होगा। तो साक्षी अर्थात इनसे परे। उसके बाद में क्यू, क्वेश्चंस नहीं है साक्षी में, साक्षी में जो हो रहा है ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कोई क्वेश्चंस नहीं है। आर, रिएक्शन नहीं है कोई। एस, शॉकिंग कुछ भी नहीं है, नो शॉक, साक्षी अवस्था कोई शॉक नहीं है, जो हो रहा है ठीक है, अच्छा है, कोई भी चीज में आश्चर्य नहीं है, ऐसा कैसे हो गया, इसने ऐसा किया, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, अर्थात यहां कौन सा पॉइंट लाना है, मुझे पहले से पता था, मुझे तो पहले से ही पता था, मैं खाली बोल नहीं रहा था बस, बाकी पता मुझे पहले से ही था, हाँ कुछ भी आने वाला है। अगला टी, टी अर्थात नो टेंशन, तनाव नहीं, कल की मुरली थी तनाव का कारण मैपन, टेंशन नहीं कोई। और लास्ट यू, अपसेट नहीं, उदास नहीं, अपसेट फ्री। तो साक्षी में ऐसी 21 बातें हैं। ये हमारे पुरुषार्थ का साक्षी भाव परिणाम भी है और दूसरा साक्षी अवस्था हमारी पुरुषार्थ भी है। दोनों चीजें हैं। एक तो सब कुछ करो तो लास्ट में साक्षी बन जाओगे, और दूसरा अभी से साक्षी भाव का अभ्यास करना है, अभी से अभ्यास करना है। चीजें हुई, मुझ पर प्रभाव हुआ, अगर हुआ अर्थात साक्षी नहीं है। नो रिएक्शन, नो इफेक्ट, नो फियर, नो गिल्ट, ये सारी चीजें नो नो नो। 21 नो इसमें भी हम साक्षी है, बाबा के लिए साक्षी। बाबा आप जो बोलते रहो, हम पर कोई प्रभाव नहीं, हम साक्षी है। उल्टा नहीं ले लेना उल्टी गंगा बहाना श्रीमद की। तो आज का पुरुषार्थ फिर से पढ़ रहे एक बार। चलते फिरते अपने को निराकारी आत्मा समझो, कर्म करते अपने आप को अव्यक्त फरिश्ता समझो, तो साक्षी दृष्टा हो जाएंगे। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पार्ट देखते, सकाश अर्थात सहयोग देते। सकाश देना ही निभाना है। ओम शांति।